الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے سوچا ان کا ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیں. واقعہ کیا اسی واقعے سے ریلیٹڈ کہ جب ان کو گولی ماری گئی نا تو ظاہر ہے اس زمانے میں جو گنز ہوتی تھیں ذرا موٹی موٹی سی اور ان کی جو اندر جو کارتوس کہتے ہیں بلٹ ہوتی تھی وہ بھی بڑی موٹی سی ہوتی تھی اور اس کے اندر بارود گن پاؤڈر جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا تھا تو وہ گن پاؤڈر جا کر کے پھر اس سے آگ لگتی تھی اور اس سے انسان زخمی ہوتا تھا پھر شہید ہو جاتے تھے مسلمان جو تھے. تو ان کو جب گولی لگ گئی نا تو یہ جیسے فرمایا انہوں نے کہ نجیب بھائی نے کہ 3 دن تک وہ اسی زخمی حالت کے اندر رہے. تو اس کا تعلق ہمارے غزوہ احد کے ٹاپک کے ساتھ بھی ہے. تو کسی نے آ کر کے نا ان سے حال پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ کا. مرزا مدر جان جا رہا ہے تو یہ ان کے اندر ایک بڑی خاص قسم کی کوالٹی تھی, ایک بڑی عجیب ان کی طبیعت تھی. بہت ہی سینسیٹیو تھے, یہ بہت ہی سینسیٹیو لطیف ان کا جو ہے نا وہ مزاج تھا. تو ایک دفعہ بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آیا, پتہ نہیں آپ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے بادشاہ والا, کہ بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آیا تو اس بادشاہ کو جو ہے نا وہ پیاس لگی تھی تو اس نے کہا کہ بھائی پانی پلائیں. تو ان کے کمرے کے اندر نا ایک مٹکا رکھا ہوا تھا, پانی کا مٹکا. تو مٹکے کے اوپر جو ہے وہ گلاس ایسے کر کے رکھا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا بھی تم جا کر کے, وہ یہ تو ضعیف ہو چکے تھے, تو انہوں نے کہا بھائی وہ پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے اور گلاس اس کے اوپر اندھے منہ رکھا ہوا ہے, تو اس گلاس میں جو ہے وہ پانی لے کر کے پی لو. تو بادشاہ سلامت نے جو ہے نا وہ گلاس لیا, پانی پیا اور گلاس کو مٹکے کے اوپر رکھ دیا. پھر اس کے بعد بادشاہ جانے لگا تو کہتا ہے کہ حضرت میں جا تو رہا ہوں لیکن آپ کے پاس کوئی خادم وغیرہ کوئی ہے نہیں کام کرنے والا, آپ کے گھر میں آپ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں اور بیمار بھی رہتے ہیں, تو کوئی آپ کو ہیلپر چاہیے ہوگا تو میں ایسا کرتا ہوں اپنا ایک خادم آپ کو دے دیتا ہوں جو آپ کی خدمت وغیرہ کیا کرے گا, آپ کے گھر کے کام کیا کرے گا. تو بادشاہ نے کہا بھائی رہنے دو. نہیں, حضرت مظہر جانے جا رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ بھائی رہنے دو, تم نے جو ابھی پانی پیا ہے نا جس گلاس میں, تو وہ گلاس تم نے سیدھا نہیں رکھا, تم نے ٹیڑھا گلاس رکھ دیا ہے مٹکے کے اوپر, ہے نا, تو تم سے تو گلاس بھی سیدھا نہیں رکھا جاتا. اس ٹیڑھے گلاس کو دیکھ دیکھ کر کے میرے سر میں مستقل درد ہو رہا ہے. کس قسم کا اس نے گلاس رکھ دیا ہے, تمہارے ایک حرکت کی وجہ سے میرے سر میں اتنی دیر سے درد ہو رہا ہے, پتا نہیں تمہارا خادم آ کے کیا کرے گا میرا. نا وہ تو بالکل ہی مجھے مار دے گا, الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا, تمہیں بھی ٹھیک سے کام کرنا نہیں آتا تو تمہارا کوئی خادم بھی ٹھیک سے کام نہیں کرے گا, تو میرا تو سر میں درد ہوتا رہے گا. تو ان کا مزاج جو تھا نا وہ بہت سینسیٹیو تھا, دیکھیں ٹیڑھا گلاس دیکھ کر کے ان کے سر میں درد ہو گیا. تو اسی طرح سے نا جب ان کی شہادت کا وقت تھا تو کسی نے آ کے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ کا, تو کہتے ہیں اور تو سب ٹھیک ہے, بس یہ جو گولی مجھے لگی ہے نا اس کے اندر سے جو بارود کی بدبو آ رہی ہے نا اس سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو بارود کی اسمیل, گن پاؤڈر کی جو اسمیل ہے وہ سر میں درد کر کے رکھتی ہے میرے پاس, اور بس سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ, ہے نا, میں نے تو شہادت کی دعا مانگی تھی تو شہادت مجھے مل رہی ہے. تو یہی شہادت کی دعا سے جو ہے وہ ہم نے بات کنٹینیو کرنی ہے کہ ہم نے آخری کلاس کے اندر کون سا والا واقعہ پڑھا تھا, ہے نا بھائی. ٹھیک ہے, سب نے تیاری کری ہے مجھے پتا ہے, بس ہم نے تو کسی ایک سے ہی پوچھنا ہے نا, سب سے تو نہیں پوچھ سکتے. حمزہ بھائی آپ بتا دیں, ایکسچینج آف ورڈس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا ایکسچینج آف ورڈس. اب لیفٹ سائڈ سے پوچھ لیتے ہیں, آپ بھی بتا رہے تھے. اب مصطفیٰ بھائی اچھا جی, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی شہادت کا, کیونکہ یہ लेक्चर सुन करके आए, रिकॉर्डिंग से सुनना चाहिए ताकि रिवाइज भी हो जाए ना। तो रिकॉर्डिंग से सुनेंगे तो फिर आपको ये याद भी आ जाएगा कि पिछली क्लास में क्या बात हुई थी। रिकॉर्डिंग भेजते हैं इसी वजह से तो भेजते हैं जी। ताकुब करें, नहीं ताकुब वाली बात तो अभी वहां तक तो नहीं पहुंचे थे। तो आखिरी जो वाकया था वो हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रहा वाला था। जी जी साद बिन उबादा, साद बिन रबी रजवा, हाँ वो तो बिल्कुल शुरू में हमने बात करी थी। और यहाँ पे जिन्होंने जवाब दिया था, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था, अब्दुल्ला बिन जहश रजतान की शहादत का वाक्य पढ़ा था। ठीक है, ऑनलाइन भी यही जवाब आए हैं। साद बिन रबी रजवान की शहादत तो हमने क्लास के बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी। आखिरी वाक्य अनी का था, तो इन्होंने भी जो है ना अल्लाह ताला से शहादत की दुआ करी थी। ठीक है ना, और दुआ के अंदर एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जो शहादत की दुआ करी थी उसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने, वो क्या थी आपको याद है? तो कहिए। नाक
नाक
कान काट दिए, वो तो उन्होंने बता भी दिया। एक और भी चीज बड़ी अहम थी उसके अंदर कि इन्होंने, अल्लाह ताला के रास्ते में इख्लास की दुआ करी थी कि ये जो मैं लड़ाई करूँ ना उसके साथ, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर मेरी बहादुरी आ जाए, कि नहीं मैं तो कितना बहादुर हूँ, देखो इस वजह से मैं लड़ सकता हूँ उन लोगों से, है ना। या ऐसी कोई शौक है भाई, लोग मैं शहीद हो जाऊंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे मरने के बाद, नहीं, अल्लाह मैं आपके रास्ते की शहादत की दुआ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि सहाबा कराम जो थे ना, ये नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत तो बहुत करते थे, अल्लाह ताला से मोहब्बत तो बहुत करते थे, लेकिन ये शैतान से अपने आप को महफूज नहीं समझते थे कि भाई शैतान अब हमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं, इनको शैतान की भी बहुत फिक्र रहती थी। ठीक है ना, इनको बहुत फिक्र रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारे मरने का वक्त आए ना, शैतान आकर के हमें कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात कह दे और हम उसकी बात को मान लें और हम जो है वो ईमान से महरूम हो जाएं, या हमारी नीयत खराब हो जाए, मरने के वक्त हमारी नीयत खराब हो जाए और हम जो है वो ये सोचना शुरू कर दें, अच्छा देखो कितना अच्छी तरीके से मैं मर रहा हूँ, लोग जो है वो मेरी तारीफ करेंगे, उसके बाद बहादुर कहेंगे मुझे। आपको पता है ना, सबसे पहले जो जहन्नुम में डाले जाएंगे लोग, उनमें से सबसे पहला तो आलिम दीन होगा, है ना, जिसने के दुनिया वालों की तारीफ के लिए इल्म दीन हासिल किया। दूसरे नंबर पे कौन होगा? अमीर आदमी, जिसने के दुनिया वालों की तारीफ की खातिर जो है वो अपना माल खर्च किया गरीबों के ऊपर और दीनी कामों के अंदर। और तीसरे नंबर पे कौन शख्स होगा जो जहन्नुम में डाला जाएगा? शहीद होगा, है ना, शहीद होगा, जो कि इन मुसलमानों के साथ लड़ते हुए जो है वो शहीद हुआ था, लेकिन वो उसके दिल के अंदर नियत क्या थी कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मुझे बहादुर कहेंगे। ये तीसरा बंदा होगा जिसको कि जहन्नुम के अंदर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका इन लोगों को जो है ना वो बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी कि देखो जान भी दे रहे हैं और अल्लाह ताला ने कबूल भी ना किया, तो क्या होगा, क्या बनेगा फिर हमारा। ठीक है, बातें करने की वैसे इजाजत नहीं है क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा चले, तीर अंदाजों का जो वाक्य है ना उसको भी हमने नहीं छोड़ना है ना, फिर हम दोबारा तीर अंदाजों के ऊपर आ जाएंगे। सही, तो उनके वाक्य में है ही इतने सारे हमारे लिए लेसन्स। ठीक है, तो एक और लेसन, एक और सबक तीर अंदाजों के उस वाक्य के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि बच्चों के ऊपर भी बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, आप लोगों के ऊपर बहुत अप्लाई होता है, वो क्या? हु लर्न फॉर पीपल, हाँ बिल्कुल सही कहा, इसके इखलास से दुआ की जी, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया था, इखलास के लिए दुआ करी थी। सहाबा कराम जो नबी अलैहिस्सलाम ने उस जबल रुमात के ऊपर खड़े किए थे वो कितने थे? 50। ठीक है, 50 थे ना, 50 में से कितने जो है वो उतर के चले गए थे? अराउंड 40, 40, 42, किसी ने कहा था, किसी ने 43 कहा था। ठीक है, और 10 के करीब जो है वो वहां पर रह गए थे। अच्छा, अब ये बताएं कि जो 40 वहां पे चले गए थे ना, जिन्होंने बात नहीं मानी थी, ठीक है, चले 50, जो 50 थे ना, उनमें से किसी का नाम बताएं?
अब्दुल्ला
अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला, है ना, अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला का नाम, किसी और का नाम बताएं? 50 सहाबा थे, 50 में से किसी दूसरे सहाबी का नाम बताएं? आपको तो क्या, मुझे भी नहीं पता, है ना, और शायद किसी को भी नहीं पता। ठीक है, अब्दुल्ला बिन जाबिर का नाम पता है क्यों?
अच्छा ही है।
हाँ अंकलों को वैसे इजाजत नहीं होती बगैर पूछे हुए जवाब देने की, बच्चों की क्लास है।
उन्होंने
उन्होंने बात मानी थी, ठीक है, अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने अच्छा काम किया था, उनका नाम हमें पता है, जिनसे गलती हुई थी 40 थे वो, 40 सहाबा जिनसे गलती हुई थी, जिन्होंने बात नहीं मानी थी और जिनकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ था, किसी एक का नाम पता है? नहीं, किसी एक का भी नाम नहीं पता। क्यों? वो जिक्र नहीं किया ताकि गुनाह को छुपाएं। हाँ ठीक है, हाँ जी, तनकीद का तो लफ्ज नहीं कहेंगे जी, आपने पहले कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, उन्होंने गलत काम किया था तो तनकीद की बजाय और कोई लफ्ज, प्रॉपर लफ्ज क्या है? जी, अपने दोस्तों में से, ये कित कौन लोग थे, ये दुश्मन तो नहीं थे ना, राइट? ये जो सहाबा थे जिनसे गलती हो गई थी और बहुत बड़ी गलती हो गई थी, कितना नुकसान हो गया था, लेकिन ये दुश्मन तो नहीं थे ना, राइट? ये अपने फ्रेंड्स थे, अपने पीर भाई थे, अपने पीयर्स थे, है ना, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने वाले सारे लोग थे, ठीक है ना। सहाबा की एक बेहतरीन क्वालिटी ये थी कि जब उनके अपने दोस्तों में से किसी से गलती होती थी ना, ठीक है, तो वो उसकी गलती को छुपा लिया करते थे। इसको कहते हैं पर्दापोशी करना, पर्दा डालना, ठीक है, छुपाना। नबी अलैहिस्सलाम से नहीं छुपा देते, नबी अलैहिस्सलाम को तो पता था किसने क्या किया, ठीक है ना, बड़ों से नहीं छुपाते थे, वहां पर जो लोग थे उनको तो पता चल गया ना भी कौन गया कौन नहीं गया, वो तो एक दूसरे को जानते थे, ठीक है। लेकिन देखें, जो लोग वहां पे मौजूद नहीं थे, उहद के बैटल ग्राउंड के अंदर जो लोग मौजूद नहीं थे, उनमें से किसी को पता नहीं चला कि किन लोगों ने गलती करी थी, है ना। हदीस की किताबों के अंदर कहीं उनका जिक्र नहीं है नाम के साथ, ठीक है। जो लड़ाइयों के ऊपर किताबें लिखी गई, इनको मगाजी के बुक्स कहा जाता है, उनके अंदर कहीं इन सहाबा का नाम नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है इन लोगों के नाम बताने की, ठीक है ना भाई, गलती हो गई, अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया, और जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, इनको माफ कर दे, आप इनसे मशवरा कर लिया करें, अब इनके नाम बताने की जरूरत नहीं है। यही मामला सिर्फ उहद में नहीं हुआ था, बल्कि उहद के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए थे कि जिनमें किसी सहाबी से गलती हो गई, दूसरे सहाबा ने उनका नाम नहीं बताया, ठीक है ना। इल्ला ये कि कोई ऐसी सिचुएशन थी कि जिसके अंदर के जरूरत थी, या नबी अलैहिस्सलाम की इजाजत से, या नबी अलैहिस्सलाम ने खुद नाम बताया, तब तो ठीक है, वरना छुपा लिया करते थे। जी
जो
हाँ, जो रहे थे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने, उन्होंने कहीं पढ़ा था कि जो 10 वहां पर टिके हुए थे ना, जिन्होंने बात मानी थी नबी अलैहिस्सलाम की, उनका तो नाम पता है, लेकिन जो नहीं थे उनका नाम छुपा लिया गया, ठीक है जी। अच्छा, जब आपको याद आ जाए तो आप बता दीजिए, पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो पर्दापोशी, अच्छा, हमारे साथ भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि भी हमारा कोई फ्रेंड होता है, वो गलत काम कर रहा होता है, गलती हो जाती है उससे, ठीक है। जी जिस किसने मारा था उसका नाम भी थोड़ी बताया था, जो शहीद हो गए थे सहाबा के हाथों उनका तो पता है, उनका तो कोई गलती नहीं थी ना, जो शहीद हो गए उनकी कोई थोड़ी गलती थी, लेकिन जिन्होंने उनको गलती से शहीद कर दिया उनका नाम को थोड़ी पता है ना। तो हम तो बात करें जिससे गलती हुई है उसके नाम को छुपा लिया करते थे, दूसरों को नहीं बताया करते थे, ठीक है। तो हमें भी यही करना चाहिए कि हमारे भी आपस में दोस्तों में ना, जब हम खेलते हैं तो लड़ाइयां हो जाती हैं, कभी कोई और इस किस्म का इख्तलाफ हो जाता है, कभी किसी से कोई गलती हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है ना, हमें दूसरों के पास जाकर के उनकी शिकायत ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि अब दूसरे फ्रेंड से मिल रहे हैं, तुम्हें पता है उसने क्या किया था, तुम्हें पता है उसने ये कहा था, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है ना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। ये सहाबा की भी नहीं है ये क्वालिटी, और ये अच्छे लोगों की क्वालिटी नहीं होती है। हंस रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी होती, ठीक है ना। अच्छा, बड़ों को बताना, बड़ों को बताने का भी मकसद ये नहीं होता कि जी हमें नफरत हो गई उनसे, हमें कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, बड़े उनके आकर के पिटाई करेंगे, है, बड़े उनके जो है वो डांटेंगे मारेंगे पिटाई करेंगे, नहीं। बड़ों को बताने में सिर्फ हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि भाई मेरे दोस्त ने गलती करी है, और वो गलती जो है उसके लिए नुकसानदेह है ना, उसको गलती की वजह से कोई नुकसान हो जाएगा किसी भी किस्म का। तो अगर मैं बड़ों को बता दूंगा तो बड़े उसकी अच्छी तरीके से उसको समझा देंगे, उसको गलती से रोक लेंगे, बचा लेंगे उसको, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ये गलती ना करे, उसको कोई नुकसान ना हो जाए बड़ा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो इस नियत से बड़ों को बताना ये सही है, लेकिन आपस में जो बातें करना शुरू हो जाते हैं ना हम लोग और चुगलियां लगाना शुरू हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। ठीक है, इसमें गीबत भी आ जाती है और इसके अंदर फिर तोहमत भी आ जाती है। बट आई हैव हर्ड दैट वी शुड नॉट हाइड द ट्रूथ, बट आई हैव हर्ड वी शुड नॉट हाइड द ट्रूथ। तो नहीं, आप अपने अब्बू या अम्मी से पूछें कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किसी के बारे में आपको ट्रूथ पता चले तो आप जो है वो हर एक को बताना शुरू कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, हाँ बड़ों को बताएं ना जा करके, ताकि बड़े जो है वो उसकी करेक्शन कर लें। ठीक है, अच्छा ये इंशाल्लाह आप लगता है आप अभी आपकी उम्र जरा छोटी है, जिस वजह से आपकी बात अभी इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगी, बड़ों से पूछिएगा, समझिए समझेगा। ठीक है, अच्छा तो ये अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा मुश्किल लेकिन समझना जरूरी है। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत का हमने वाकया पढ़ा ना, तो कैसी जबरदस्त उन्होंने दुआ मांगी थी है ना, कितना यानी आप तस्वीर कर सकते हैं कोई इस तरह की दुआ मांगे, ए अल्लाह मैं शहीद हो जाऊं। फिर उसके बाद जो है वो तो मिर्जा मदर जाने जाना ने भी ये वाली दुआ नहीं मांगी थी जो इन्होंने मांगी थी, कि मेरे कान को काट लिया जाए, मेरे नाक को काट लिया जाए और एक मुसला कर दिया जाए मेरा, है ना, ऐसी दुआ मांगी थी उन्होंने। लेकिन सहाबा कराम का जब हम जिक्र करते हैं, ठीक है, तो अब्दुल्ला बिन जहश रतान जैसी दुआ तो किसी और सहाबी ने नहीं मांगी है ना, इतनी जबरदस्त अल्लाह की मोहब्बत वाली दुआ मांगी इन्होंने, है ना, ए अल्लाह मैं आपके सामने जो है वो खड़ा किया जाऊं, फिर आप मुझसे पूछें ए अल्लाह तेरे कान ते अब्दुल ए अब्दुल्ला तेरे कान और नाक जो है वो क्यों काटे गए, है ना, और मैं जवाब दूं कि अल्लाह आपकी वजह से काटे गए, है ना, और आप जवाब दें तुमने सच कहा। इससे ज्यादा बेहतरीन दुआ और सोच सकते हैं। लेकिन जब सहाबा का जिक्र आता है तो क्या अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है वो सबसे अफजल सहाबी कहा जाता है? क्या उनको सेकंड नंबर का अफजल साहबी कहा जाता है? क्या उनको थर्ड नंबर का अफजल साहबी कहा जाता है? चलो फर्स्ट नंबर के अफजल साहबी किनको कहा जाता है जी, उनसे आप ही तो बताएं सबसे बड़े साहबी कौन है? अहमद
अबू
सैयद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दूसरे नंबर के साहबी कौन है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तीसरे नंबर के साहबी कौन है? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। चौथे नंबर के साहबी कौन है भाई? अब्दुल्ला है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला है ना, और फिर उनके बाद जो है ना पांचवें छठे सातवें आठवें ये वो है अशरा मुबशरा साहब है ना, सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ ये अशरा मुबशरा साहब है। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नंबर ही नहीं आता कहीं है ना, ना जो है वो खुलफाए राशिदीन के अंदर उनका नाम आता है, ना जो है वो अशरा मुबशरा के अंदर उनका नाम आता है। ठीक है, तो इनका तो नाम कहीं नीचे वीचे जाकर के कहीं पे आता है। ठीक है, अच्छा इस किस्म की दुआ ना तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी मांगी है ना, ना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी मांगी। ठीक है ना, अच्छा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी उनका जख्म भी नहीं खाया उन्होंने, कोई है कि अबू बकर सिद्दीक को 70 जख्म लगे है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को 17 जख्म लगे है कहीं? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा भाई, आपने पढ़ा कहीं? 17 जख्म अब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को लगे है ना, उनका हाथ छल हो गया, उन्होंने जो तीर को हाथ पे रोक लिया, नहीं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को तो लगता है कोई जख्म ही नहीं लगा इस तरह का है ना जिहाद के अंदर। ठीक है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इस तरह का कोई जख्म नहीं लगा, ना जो है वो कोई बहुत ज्यादा सोर्ड फाइटिंग वगैरह इस किस्म के वाकयात उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के है ना। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो तो बदर में तो वो थे ही नहीं। ठीक है, तो वो अफजल सहाबी कैसे बन गए और ये क्यों नहीं बन सके अफजल साहब जी?
इसलिए
सोबत तो इनको भी हासिल थी।
क्योंकि बाकी जो काम के
उन्होंने ज्यादा कुर्बानियां दी थी और इन्होंने तो जान कुर्बान कर दी थी। जान से बड़ी कुर्बानी हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? जान से बड़ी कोई कुर्बानी हो सकती है?
आप सुन बात खरीदा मान लो आप
तो खलीफा की तरतीब है ना, अफजल सहाबी की बात करें ना, अफजल सहाबी सबसे ज्यादा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा जो है ना वो अफजल जो है वो ये तो वो कैसे भी होता है। तो उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से वो सबसे अफजल हो गए, जो कि इन्होंने नहीं किया, और इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से ये शहीद तो बन गए। अच्छा, हमजा रजा तारण की बात कर लेते हैं। हमजा रजा तारण वो क्या बने? सैयदुल शुहदा है ना, लेकिन वो भी अफजल सहाबा में उनका जिक्र ही नहीं है। हमजा रजा तारण का भी जिक्र नहीं है अफजल सहाबा के अंदर, ठीक है ना। चले, बड़ों को इजाजत देते हैं अगर आप जवाब दे सकते। जी ठहर जाए।
कौन
उम्मत की रहनुमाई की अताअत फौरन करते थे, सोहबत मोहब्बत और अताअत की वजह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत तो सारे सहाबा की थी।
इसलिए
फौरन ईमान लेकर के आ गए थे। हाँ, ये बड़ी अच्छी वजह है कि बिल्कुल शुरू में ईमान लाने वाले थे, ठीक है। लेकिन जो अफजलियत की वजह बनती है ना, वो दरअसल जो है ना उसको हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं, मोहब्बत और अताआत की वजह से, ठीक है ना। ये जवाब असल में सही है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब साथ दिया जब किसी ने नहीं दिया, सोहबत में ज्यादा वक्त गुजारा। नहीं, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का एक तो उस वक्त साथ दिया जब कोई साथ देने वाला नहीं था, ठीक है। बाकी जो सहाबा थे वो तो बाद में आए हैं कि जबकि बहुत सारे और लोग भी आ चुके थे, ठीक है। अच्छा, ये लेकिन एक दूसरी डिस्कशन है कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। लेकिन देखें, एक बड़ी अहम चीज जो है ना, जो कि यहाँ पर हम आपको समझाना चाह रहे हैं, वो ये है कि जान की कुर्बानी देने से भी ज्यादा बड़ी एक चीज है, जान की कुर्बानी से भी ज्यादा बड़ी एक चीज है। वो कौन सी चीज है? बच्चों की क्लास है तो बच्चों को पहले है? अपने नफ्स की कुर्बानी देना है? आप ये कह रहे हैं
क्या
कैफियत नबी।
जो बाकी
जी
की
जी अब्दुल्ला, देखें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला और इन जैसे दूसरे सहाबा थे ना, इनको अल्लाह ताला ने बहुत जबरदस्त किस्म की अकल दी थी। बहुत जबरदस्त अकलमंद लोग थे, बड़े इंटेलेक्चुअली सुप्रीम किस्म के लोग थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तो सबसे ज्यादा, ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का मुकाम ये था कुरैश के अंदर कि कुरैश इनको जो है ना वो बहुत ज्यादा इज्जत दिया करते थे और इनकी बातों को ट्रस्ट किया करते थे। इनका यानी ही हैड अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल पोजिशन, है ना। देखें, नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी, निस्बत मिल गई ना ऊपर से, है ना, ऊपर से निस्बत मिल गई। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि भी ये मेरे नबी हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बता दिया, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया वो इस जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वही के जरिए से दिया, और अल्लाह ताला को नबी अलैहिस्सलाम की क्वालिटीज भी पता है, ठीक है ना। कुरैश को नबी अलैहिस्सलाम की सारी क्वालिटीज नहीं पता थी। कुरैश इतना ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम को अहमियत नहीं देते थे, सादिक और अमीन तो कहते थे, ठीक है। लेकिन कुरैश के मुआशरे के अंदर जो है ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी, बहुत ज्यादा बड़ा मुकाम हासिल था, ठीक है। सो मच सो कि अबू सुफियान का वाक्य हमने पिछले पिछली क्लास में पढ़ा था ना, ठीक है ना। अबू सुफियान ने क्या किया था? अबू सुफियान को थोड़ी पता था कि इन्होंने खलीफा बनना है, है? अबू सुफियान को पता था कि जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले जाएंगे तो उन्होंने खलीफा बनना है? अबू सुफियान को तो ये बात नहीं पता थी ना। लेकिन अबू सुफियान को क्या बात पता थी? तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसने क्या कहा था? पहले पूछा था कि अफिल कौम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि यही इनके नबी हैं, यही इनके लीडर हैं, ठीक है। अबू सुफियान को तो आखिरत के हालात, यानी बड़ों की बात है थोड़ी सी, अबू सुफियान को तो मारिफत और ये सारी चीजें हासिल नहीं थी ना, उसको तो ये पता था कि ये इनके लीडर हैं, ठीक है ना। तो लीडर का पूछा कि भाई लीडर मौजूद है कि नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे अबू सुफियान ने किसका पूछा? ابو سفیان نے اس شخص کا پوچھا جو کہ اس کو پتا تھا قریش مکہ میں سب سے زیادہ اہمیت والا شخص, سب سے زیادہ جس کو جو ہے وہ مقام حاصل ہے نا, جو کہ نبی علیہ السلام کو ریپلیس کر سکتے ہیں. جب وہ چلے جائیں گے دنیا سے تو نبی علیہ السلام کے خلیفہ کون بن سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق بن سکتا ہے. ابو سفیان کو تو تھوڑی پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد پھر خلافت کس کو ملے گی اور کیا ہوگا, خلافت کو لوگ راجدین کون ہوگا, وہ کو تھوڑی پتا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عقل عطا فرمائی تھی, بہت زیادہ عزت عطا فرمائی تھی, بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا, لیکن انہوں نے اپنی یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام کے اوپر قربان کر دی تھیں. کس وجہ سے قربان کر دی تھیں؟ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے, نبی علیہ السلام کی نبوت کی وجہ سے, نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے, سب کچھ ان کے اوپر قربان کر دیا تھا. اور ان کی جو قربانی تھی نا یہ ون ٹائم قربانی نہیں تھی, ان کی قربانی ون ٹائم قربانی نہیں تھی کہ جس کو کہتے ہیں امپلس ایکشن, ایک دم سے جو ہے نا وہ کوئی ایکشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جا کر کے آپ جو ہے وہ بڑا سا کوئی ایکشن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہادری والا ایکشن جس کو کہتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں تھا. آپ نے انڈیا کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ انڈیا والے کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور آن لائن بھی بہت سے ہیں. انڈیا کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہندو مسلم فساد ہوتے تھے, اب نہیں ہوتے, اب ضرورت ہی نہیں اس کی, پہلے ہوتے تھے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو ہندو مسلم فساد کے اندر نا بڑا ایسا ہوتا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ ایک دم سے کھڑا ہوتا تھا اور جا کر کے ہندوؤں سے لڑ جاتا تھا, ہے نا, ایک دم سے جا کر کے نا وہ نہ یہ نماز پڑھتا تھا, نہ جو ہے یہ کوئی داڑھی واڑی تھی, نہ علم والا تھا, نہ کچھ تھا, بس ایک دم سے جا کر کے لڑ جاتا تھا, ہندو اس کو مار دیتے تھے, یہ شہید ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور شہادت کی وجہ سے, ظاہر اسلام کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام دے دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر نا انڈیا کے اندر ایک بڑا زبردست مشہور ہے, ایک جملہ بڑا مشہور ہے, کسی کو پتا ہے؟ انڈیا کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جو کہ نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ داڑھی رکھتے ہیں, نہ سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں, نہ شریعت پہ عمل کرتے ہیں, لیکن ہندو سے لڑنے کے لیے فوراً تیار ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا جملہ مشہور ہے؟ ٹھیک ہے, کیا یہ انڈیا کے اندر کہا, یہ تو ایک اردو کی کہاوت ہے, اس کے لیے ایک مشہور ہے بڑا جملہ. یہاں پہ کوئی جواب دے گا؟ انہوں نے بھی نہیں سوچا. اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ سر کٹانے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں, سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سر کٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے, ہندو سے جا کے لڑ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ساری زندگی سر نہیں جھکایا, لیکن جب کوئی ایسا ہی سچویشن کریٹ ہو گئی تو اس پہ جا کے سر کٹا دیا, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو شہادت تو مل جاتی ہے لیکن افضلیت نہیں ملتی, بڑائی نہیں ملتی اس سے, بڑائی تو اس کو ملتی ہے جو کہ سر جھکانے کے لیے تیار ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر جھکانے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے نا افضل صحابہ جو تھے, یہ سر کٹانے کے لیے تو تیار تھے ہی, وہ تو چھوٹی سی چیز ہے, سر کٹانا چھوٹی چیز ہوتی ہے, چھوٹی چیز ہوتی ہے سر کٹانا. کافر بھی سر کٹانے کے لیے تیار تھا. سنا تھا نا ابھی ہم نے غزوہ احد کے اندر پہلے کتنے نکلے تھے؟ 22 کافر نکلے تھے سر کٹانے کے لیے. غلط کہہ رہا ہوں؟ 22 کافر ایک کے بعد ایک دیکھ رہے ہیں, وہ بھی سر کٹ مر گیا, وہ بھی مر گیا, پھر بھی نکل رہے ہیں, وہ بھی مر گیا پھر نکل رہا ہے, وہ بھی مر گیا پھر نکل رہا ہے. 22 کافر نکلے تھے سر کٹانے کے لیے, سر جھکانے کے لیے ایک بھی تیار نہیں تھا ان میں سے, ہے نا, کہ اللہ کے نبی کے سامنے سر جھکائے. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, یہ سارے کے سارے جو تھے نا یہ سر جھکانے کے لیے ہر وقت تیار تھے, اور انہوں نے سر جھکا دیا تھا. ان کی پوری زندگی جو ہے نا, ان کی پوری زندگی جو ہے نبی علیہ السلام کے سامنے سبمٹ, پوری زندگی جو تھی وہ سبمیشن والی زندگی تھی, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز چاہیے. سر کٹانا تو کسی کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں, کسی کو نہیں موقع دیتے, رائٹ. سر کٹانا کوئی تھوڑی, وہ ہمارے اختیار میں کوئی تھوڑی ہے, ہے نا. وہ تو اگر موقع مل گیا, لڑ گئے, اس نے مار دیا, شہید ہو گئے, ورنہ کوئی تھوڑی. کہ سر جھکانا جو ہے نا یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں مقام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے. اسی وجہ سے صدیق جو ہے نا, صدیق وہ ہوتا ہے جو کہ سر جھکانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. یہ شہید سے بہت درجہ اونچا ہے نا. قرآن مجید میں ہے والصدیقین والشہداء والصالحین, انبیاء کے بعد صدیق کا نمبر آتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہید کا نمبر آتا ہے, ٹھیک ہے. तो सर कटाना जब मौका मिले अल्लाह ताला हमें तैयार रहना चाहिए, शहादत की दुआ भी करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम उमर फारूक ने दुआ भी करी शहादत की, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो है ना अब जिंदगी तो अपनी मर्जी से गुजार रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं माननी, कोई जो है वो अपने हिसाब से काम करना है, और फिर जो है वो नहीं बस शहीद हो जाऊंगा सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा उसके बाद शहीद होने के बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमने तो सर झुकाना है, ठीक है, और सर झुकाना जो है ना ये है कामयाबी की अलामत जी। अच्छा, इनके वाकये के बाद अब्दुल्ला बिन जहाश के वाकया अगर हमें पूरा समझ में आ गया, तो अगला वाकया जो है ना वो है हजरत दो रिश्तेदारों का। एक है अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, ये थे हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो बहुत मशहूर सहाबी है ना एक जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनके अब्बू थे, ठीक है। तो अब इनकी भी कोई अजीब किस्म की बातें थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो इनको अल्लाह ताला ने एक बड़ा स्पेशल मुकाम दिया। साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो इनका पहले सबसे पहले हमने जिक्र पढ़ा था शहादत में, नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा था ना उनको तलाश करने के लिए और पूछने के लिए कि भाई साद बताओ क्या हाल है ना, उनकी खास बात क्या थी, कोई तो खास बात होगी ना कि नबी अलैहिस्सलाम को उनकी फिक्र पड़ी हुई थी, है ना, अपने चचा को बाद में तलाश करने के लिए गए, सबसे पहले किसके बारे में पूछा, साद बिन रबी रजान के बारे में, क्या खास बात थी साद बिन रबी रजान के बारे में, कोई बताएगा, किसी को याद है साद बिन रबी रजान की सबसे खास बात, जिसकी वजह से यकीनन यही एक वजह थी कि नबी अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इनकी फिक्र थी जी। नहीं
तो बातें
अच्छा पता नहीं मुझे, वैसे इसका पता नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी वजह तो नहीं, रंग के कारण तो भैया बिलाल भी था, बहुत सारे लोग
नहीं।
आजिज़ी में नबी अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया था इनकी शहादत का जब सुना था ना, तो आपसे सुनने क्या फरमाया था, आपसे फरमाया था रहम अल्लाह, अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए, नसहा लिल्लाहि वले रसूलिही हय्यन व मय्यतन, हय्यन व मय्यतन, कि ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए खैर ख्वाही रखता था, अल्लाह और उसके रसूल के लिए ये बिल्कुल सिंसेयर था, ही विश द बेस्ट फॉर अल्लाह एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दिल के अंदर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यानी क्या कि अल्लाह ताला हमारे माबूद हैं, अल्लाह के सारे बंदे जो है ना वो अल्लाह ताला के मानने वाले बन जाएं, ईमान वाले बन जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला को इससे ज्यादा मोहब्बत और किसी चीज से नहीं है कि अल्लाह का बंदा जो है ना वो अल्लाह ताला की का मानने वाला बंदा बन जाए। नबी अलैहिस्सलाम को इससे ज्यादा किसी चीज से मोहब्बत नहीं है कि कोई इंसान जो है वो ईमान वाला बन जाए और जहन्नुम से बच जाए, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम की मदद करना, अल्लाह ताला की दीन की मदद करना, साद बिन रबी ताला के दिल के अंदर ये चीज थी जो कि वो सारी जिंदगी करते रहे, और नबी अलैहिस्सलाम रेकग्नाइज दिस, नबी अलैहिस्सलाम पहचान गए थे उनको देख करके, उनकी बातें सुन करके, उनकी आदतें देख करके, कि इनको फिक्र है, अल्लाह की फिक्र है क्या क्या चीज अल्लाह ताला को खुश करती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र है कि क्या चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करती है, ठीक है। तो जब इनका इंतकाल हो रहा था, बिल्कुल मौत के करीब थे, उस वक्त भी उन्होंने क्या कहा, उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे कौम वालों को जाके बता देना कि अगर कुछ हुआ ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मैं तुम इन लोगों को माफ नहीं करूं, यानी इनको फिक्र मरने के वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ी हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि इनको जो है वो मरने के वक्त जो है वो बड़ी खैरख्वाही करी इन्होंने मेरी, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इन्होंने जीते हुए भी खैरख्वाही करी और मरते हुए भी खैरख्वाही करी। तो साद बिन रबी तारान की क्या खास बात कि नबी अलैहिस्सलाम को सबसे पहले उनकी फिक्र हुई, क्योंकि उनको फिक्र थी नबी अलैहिस्सलाम की, ठीक है। तो ये क्वालिटीज होती हैं, ये क्वालिटीज जो है ना ये हमने हम अभी भी पैदा कर सकते हैं, इस दौर के अंदर भी हमें इन्हीं क्वालिटीज को पैदा करना है, तब हम भी जो है वो अच्छे मुसलमान बन जाएंगे, कि हमें भी जो है ना अल्लाह के दीन की फिक्र हो जाए, हम भी जो है वो एक दूसरे के खैर ख्वाह बन जाए। नबी फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन तो सरासर खैर ख्वाही का नाम, यानी जिसके अंदर बदख्वाही है ना, बदख्वाही का मतलब समझते हैं, बदख्वाही क्या चीज होती है, जो खैरख्वाही नहीं होती उसको बदख्वाही कहते हैं, ठीक यानी बदख्वाही का मतलब ये कि लोगों के बारे में बुरा सुने, यार ये बर्बाद हो जाए तो कितना अच्छा हो, ये नाकाम हो जाए तो कितना अच्छा हो, है ना, ये फेल हो जाए तो कितना अच्छा हो, ये हार जाए या इसकी जो है ना वो किसी तरह से चुगली लगा दूं ताकि इसको पिटाई हो जाए इसकी, कितना अच्छा हो, ये कहते हैं बदख्वाही। और बदख्वाही जहां पर हो ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वहां पे दीन नहीं है, है ना, अद्दीन नसीहा का यही मतलब है कि जहां पे बदख्वाही है एक दूसरे के बारे में, बुरी बातें, बुरी सोच, है ना, इट देर इज नो दीन देयर। अब वो टोपी पहन रहा हो, हजरत जी वाली टोपी, हजरत जी वाला जुब्बा पहनता हो, सर पे इमामा भी बांधता हो, उम्रे भी करता हो, हज भी करता हो, लेकिन बदख्वाही करता हो दूसरों के बारे में, कोई फायदा नहीं है तुम्हारी टोपी का, तुम्हारे इमामे का, तुम्हारी दाढ़ी का, तुम्हारे जुब्बों का, तुम्हारी उम्रों का, तुम्हारी नमाजों का, कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि दीन ही नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो हम अपने अंदर खैर ख्वाही पैदा करें ना, अगर बदख्वाही आ रही है अल्लाह माफ माफ कर दीजिए, माफी हो, गलती हो गई, बदख्वाही मैंने किसी बारे में कर दी, ठीक है ना। तो खैर ख्वाही इतनी अच्छी चीज है और बदख्वाही इतनी ज्यादा बुरी चीज है कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला बिन जहाश रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक्य पढ़ लिया, अब अम्र बिन हराम रज़ियल्लाहु अन्हु का भी कोई ऐसी होगी क्वालिटी, अल्लाह बेहतर जानता है क्या थी, हमें उतनी तहकीक तो अभी नहीं हो सकी, लेकिन अमर बिन हराम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक्य भी बड़ा अजीब सा है कि जब जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा ना कि मेरे बाप जो है वो शहीद हो गए और इनके बाप की लाश का भी मुसला कर दिया गया था, यानी इनके भी नाक कान वगैरह काट दिए गए थे और इनको भी बहुत, है ना, उनकी बॉडी को खराब किया था, तो कहते हैं कि मैंने जो है ना वो अपने बाप के मुंह के ऊपर से कपड़ा उठा करके देखने की कोशिश करी ना, तो मुझे सहाबा ने मना कर दिया, ठीक है, तो मैंने फिर कोशिश करी तो साहब ने फिर मना कर दिया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी कि ठीक है तुम अपने बाप को देख लो। जब मैंने अपने बाप को देखा ना तो मुझे बहुत, यानी बहुत तकलीफ हुई कि भाई उनको इस तरीके से, आप इमेजिन करें ना, काट दिए जाए, मतलब तो ये कोई प्लास्टिक की किसी चीज की बात नहीं हुई, इंसान की बॉडी को जो है वो इस तरीके से काट दिया जाए, है ना। अब बेटा अगर देखेगा तो उनके दिल के ऊपर कितनी, कितना गम आया होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी ना अपने किसी करीबी रिश्तेदार को ऐसी हालत में देख करके, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको देखा ना तो फरमाने लगे कि अब जाबिर, मैं तुमको देख रहा हूँ कि तुम जरा बड़े परेशान लग रहे हो, तुम, है ना, तो बहुत दुख हो रहा है अपने बाप को देख करके। तो मैंने नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाप जो है ना इस गजवे में शहीद हुए और उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज था, ठीक है, तो वो ना कर्ज जो है वो मेरे लिए छोड़ गए हैं कि मैं अब अदा करूं वो कर्ज, तो अब मुझे इस बात से बड़ी परेशानी हो रही है और जाहिर है देख करके भी उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि अब्दुल्ला, मैं तुम्हें एक खुशखबरी ना सुनाऊं, तो वो खुशखबरी क्या है कि किसी इंसान से अल्लाह ताला ने आमने सामने बात नहीं करी, ठीक है, कि वो अल्लाह ताला को देख सकता है और अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं, अल्लाह ताला तो सभी को देख रहे हैं, किसी इंसान से अल्लाह ताला ने ऐसे बात नहीं करी, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप की शहादत के बाद जो है ना वो उनको जिंदा किया और उनसे बिल्कुल आमने सामने बात करी, बिल वज वज चेहरे को कहते हैं, अल्लाह ताला का चेहरा उनके सामने था और वो अल्लाह ताला को देख रहे थे, तो तुम्हारे बाप को अल्लाह ताला ने जिंदा किया और बिल मवाजे उनसे कलाम किया और ये कहा कि ऐ मेरे बंदे, कोई ख्वाहिश है तो बताओ, कोई ख्वाहिश है तो बताओ। तो तुम्हारे बाप ने जवाब दिया कि अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे दोबारा से जिंदा कर दें और जमीन में, दुनिया में भेज दें और मैं वहां पे जाकर के फिर से शहीद हूं और फिर आपके पास आऊं, यानी मुझे एक दफा फिर जरा शहादत का मजा लेने दें, मुझे जिंदा करके वापस भेज दीजिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ऐसा उसूल बना दिया है कि मरने के बाद दुनिया के अंदर वापसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो कुछ तो किया होगा ना इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कि किसी और के साथ नहीं, सिर्फ इनके साथ अल्लाह ताला ने बकायदा अपना चेहरा सामने रख करके इनके साथ बात करी, ठीक है जी, फेस टू फेस जिसको कहते हैं जी, ठीक है, मरने के बाद लोगों के साथ। अच्छा, मेराज के वाकये वाली डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि वो बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम की बात थी, नबी अलैहिस्सलाम ऊपर गए तो अल्लाह ताला को देखा, अल्लाह ताला ने उनको देखा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अब आम, ये तो उम्मत ही है ना, ठीक है ना, और मरने के बाद जो है वो अल्लाह ताला बिल्कुल सामने उनसे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अमर, ये जो अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम रजी अल्लाह तआला थे ना, ठीक है, तो इनकी दो बहनें थी जी,
इनके बाप
वो जाबिर रहता है, उन्होंने उतार दिया होगा, मुझे नहीं पता क्या बात। तो ये जो मुझे नहीं पता वाला जवाब है ना, ये सबसे अच्छा जवाब होता है, ला अदरी, ठीक है, जो बोल दो, नहीं पता तो नहीं पता, क्या करूंगा, ठीक, हमारे अकाबरीन ऐसे जवाब, ला अदरी, मुझे नहीं पता, सही। अच्छा, तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम रज़ियल्लाहु की जो है वो दो बहनें थी, एक का नाम था फातिमा, एक का नाम था हिंद, ठीक है ना। तो हिंद नाम जो था ना वो बड़ा मशहूर था अरब में, हिंद नाम बड़ा मशहूर था, क्यों, हिंद जो है ना ये कोई अलग सी चीज नहीं थी।
हिंदुस्तान
हाँ, यही वजह थी इसकी, ये हिंद जो है ना ये हिंदुस्तान वाला ही हिंद है, ये कोई और अरबी वर्ड नहीं जिसका कुछ और मतलब होता है, नहीं, ये हिंदुस्तान वाला हिंद है, ये बड़ा पसंद था इन लोगों को हिंदुस्तान, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान से जो है ना वो गरम मसाले भी आते होंगे है ना, स्पाइसेस आती होंगी, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई आती होंगी, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम की एक तलवार थी वो हिंद की बनी हुई थी ना, है ना, और हिंद से बन बन के जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह आ रही होती थी, दे लव्ड हिंद, ठीक है, तो वो अपनी बेटियों का नाम जो है ना वो हिंद या हिंदा रखा करते थे, ठीक है, तो एक नहीं दूसरी भी मिल गई हिंदा यहाँ पर। तो ये जो हिंद थी इनके शौहर थे एक, ठीक है, उनका नाम था अमर बिन अल जुमू, अमर बिन अल जुमू, ठीक है, ये हिंद के शौहर थे।
हिंदुस्तान का तो
जी, तो
मतलब
नाम बदल दो उसका भाई, हिंद हिंदुस्तान, हिंदुओं के रहने के गए तो नाम तो उसका हिंदुस्तान ही है ना, अब उसका नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तो भाई आइडेंटिफिकेशन बन जाती है ना किसी जगह की, आइडेंटिफिकेशन है कि उसका नाम जो है वो हिंद है, ठीक है। अब आप उसकी तफसील में जाएं तो वो जरूरी नहीं है हर चीज के अंदर तफसील डालें, अच्छा हिंदू की जगह है, अब तो मैं इसका नाम ही बदल दूंगा, है ना, मुसलमान नाम है, पाकिस्तान रख देते इसका नाम नहीं जी, इन्होंने भी, अच्छा, तो ये जो थे ना अमर बिन अल जुमू, ये थे लंगड़े, ठीक है, इनके पार पैर जो था ना एक खराब था, ये मुश्किल से चलते थे, अच्छा खासा लंगड़ापन था, और ये बूढ़े भी बहुत थे, ठीक है। इनके थे चार बेटे, वो चारों बेटे जो थे ना वो हर जिहाद के अंदर शरीक होते थे और बड़े बहादुर किस्म के बच्चे थे, ठीक। तो जब ये ओहद के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना सहाबा को चलने के लिए, तो अमर बिन अल जुमू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे, इन्होंने कहा चाहा कि भाई मैं भी जाऊंगा, मैं भी लड़ूंगा, तो इनके बेटों ने कहा कि भाई बाबा हम जा रहे हैं ना लड़ने के लिए, और आप तो चूंकि मतलब ज़ईफ भी हैं और आप लंगड़े भी हैं, चल भी नहीं सकते, तो आपके ऊपर तो फर्ज भी नहीं है जिहाद, आप घर में रहिए, हम है ना जा आपकी बिहाफ पे लड़ने, है ना। इन्होंने कहा नहीं मुझे भी जाना है, इन्होंने जाके नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत कर दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे मुझे कह रहे हैं कि आप जिहाद में नहीं जाए और नहीं जाने दे रहे मुझे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि हाँ आपके ऊपर जिहाद तो फर्ज नहीं है क्योंकि आप बूढ़े भी हैं, आप कमजोर हैं, और जी
बताया
कि वो एक्सक्यूज है,
था
हाँ अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि भाई ऐसा कोई शख्स हो तो वो एक्सक्यूज है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप तो एक्सक्यूज हैं, लेकिन साथ ही ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटों से कहा कि अगर जाने दो तो क्या है ना, जाने दो, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या जाता है, ठीक है। तो ना फिर बेटों ने जाहिर है फिर इनको मना नहीं किया, ये जो है ना वो घर से निकलने लगे जिहाद के लिए, ठीक है, लंगड़े हुए और कुछ लाठी वाठी लेकर के चलते होंगे। उधर से जो है ना वो हमने सुना है के बीवी ने भी कहा, यानी बीवी इनकी कौन थी, हिंद, उन्होंने भी कहा वो तुम कहाँ से जाओगे लड़ने के लिए, ना बीवियां बीवियां होती हैं बहरा, उन्होंने कुछ इस तरह की बात कर दी होगी, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना वो क्या कहा कि किबले की तरफ मुड़े और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी शहादतन, कि ए अल्लाह आप मुझे शहादत अता फरमा दिए बतौर रिस्क के, मुझे शहादत दे दीजिए, ठीक है ना। वला तरिदुनी इला अहली, और मुझे अपने घर वालों के पास लौटाइएगा नहीं, वापस नहीं लेकर के आइएगा, ठीक है ना। ये उन्होंने दुआ मांग ली और उसके बाद ये पहुंच गए ओहद के अंदर, और जाहिर है बेचारे लंगड़े भी थे, ज़ईफ़ भी थे, उन्होंने कहा किसी से लड़ाई करनी थी, ये शहीद हो गए वहां पे जाकर। ठीक है, अब जब ये शहीद हो गए और साथ साथ जो है ना इनका एक बेटा भी जो है ना वो भी शहीद हो गया, ठीक है, चार में से एक खल्लाद बिन अमर बिन जमू वो भी शहीद हो गए। ठीक है, फिर जो वो भाई थे इनकी बेगम के जो भाई थे अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम वो भी शहीद हो गए, जिनका भी हमने पढ़ा था अल्लाह ताला से उन्होंने बात करी थी। ठीक है, तो जब गजवा बहुत खत्म हो गया ना तो ये हिंदा आई, जब औरतें वगैरह आ गई थी तो अपने जख्मियों को देख रही थी तो हिंदा भी आई और इन्होंने क्या किया, ये औरतें भी क्या अजीब औरतें होती थी, इन्होंने अपने इन तीनों रिश्तेदारों को यानी अपने बेटे को, अपने शौहर को और अपने भाई को, तीनों को ऊंट के ऊपर इनकी डेड बॉडीज को डाला। क्या हिम्मत होती होगी इन औरतों की, यानी ये लोग जो मरे थे तो भाई कोई कोई वैसे भी डेड बॉडी को देखने से तो हमारी तो जान जाती है ना, अक्सर लोग जो है मुर्दे को नहलाने से डरते हैं कि भाई वो पता नहीं क्या जिंदा ना हो जाए वो तो कब्रिस्तान के करीब जाने से डरते हैं और मुर्दों को देखने से डरते हैं, और अगर बॉडी के ऊपर जो है वो कट के निशान हो और खून निकल रहा हो तो कुछ लोगों को तो बेहोश हो जाए उधर ही, औरतें तो क्या मर्द ही मर्द भी बेहोश हो जाए ना, क्या औरतें होती थी। ये लोग कैसे शहीद हुए थे, तलवारों की काट से शहीद हुए थे ना, इतनी ज्यादा बड़ा निशान, इतनी ज्यादा बड़ी चोट कि बंदा मर जाए। आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, चोटें लगती हैं ना, फुटबॉल में कभी किसी को चोट लग रही है, कभी किसी को जो है स्कूल में चोट लग रही है, कभी किसी को चोट लग, मर जाते हैं, हर चोट पे मर जाते हैं, नहीं चोट पे बंदा मरता तो नहीं है, तो जिस चोट पे बंदा मर जाए वो चोट कैसी चोट होती होगी जरा सोचे तो जरा, है ना। तो अब इन लोगों को कितना खून बाहर बह रहा होगा, कैसी कैसी जो है उनको काट पीट, और ये हिंदा आ रही है इन तीनों को जो है वो ऊंट के ऊपर रख करके मदीना मुनव्वरा जाने की कोशिश कर, भी मैं ले जाकर के मदीना मुनव्वरा में अपना जो कब्रिस्तान होता है वहां पे हम इसको दफनाएंगे। ऊंट को जब ये उठाती ना और मदीना मुनव्वरा की तरफ चलाने की कोशिश करती, ऊंट चलता ही नहीं। ठीक है, अब जब ऊंट को ये कहती घुमा करके चलाने की कोशिश करती तो ऊंट चलना शुरू हो जाता ओहद की तरफ, मदीना मुनव्वरा की तरफ चलने से इनकार, ओहद की तरफ चलने से इकरार, है ना, इनके समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम से जाकर के उन्होंने पूछा, ये लोग पूछ रहे थे जब नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं तो क्यों ना जाके पूछो भाई। भाई इनकी बड़ी अच्छी आदत होती थी सहाबा किराम की कि नबी अलैहिस्सलाम जब अवेलेबल होते थे नबी अलैहिस्सलाम तक ही सारे मामलात लेकर के जाते, खुद से जो है ना वो खाली हल करने की कोशिश नहीं किया करते। ठीक है, आप ससुरम के पास जाके पूछ रहे होते थे तो ये पहुंची, आप ससुरम ने फरमाया कि अच्छा ये तो जो ऊंट है ना ये तो लगता है कि इसको हुक्म मिला हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे जब नबी अलैहिस्सलाम के ऊंट को भी तो हुक्म था कि कहाँ बैठना है जाकर के हिजरत के वक्त, याद है। ठीक है, ये ऊंट तो मामूर है, इसको तो हुक्म मिला हुआ है, ये बताओ कि क्या अब्दुल्ला ने जो है ना वो अपने घर से निकलते हुए कोई दुआ मांगी थी अमर बिन जुम्मू ने। उन्होंने कहा जी, उन्होंने तो ये दुआ मांग ली थी कि अल्लाह मुझे मेरे घर वालों की तरह वापस नहीं लेकर के आना। तो मैंने फरमाया कि अब ये ऊँट नहीं वापस जाने वाला, तुम इसको वापस नहीं लेकर के जा सकती, इनको यहीं पे दफन करना हो। ठीक है, इन्होंने कसम खा ली थी और दुआ मांगी थी, दोनों चीजें इन्होंने करी थी, एक तो अल्लाह पे कसम खा ली थी कि मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, और ये भी नहीं कि खाली है कि मैंने कसम खा ली है, बल्कि अल्लाह से दुआ भी कर ली थी, दोनों काम किए थे। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वल्लजी नफ्सी बियदिही, कि उसकी कसम जिसके हाथों में मेरी जान है, यानी अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिनकुम, तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं, मन लौ अक्समा अलल्लाही लअबर्रा, ठीक है ना, कि अगर वो अल्लाह ताला के ऊपर कसम खा लेना तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरी कर देते हैं। मिनहुम अमर इब्नुल जमू, उनमें से अमर इब्नुल जमू भी है कि अगर अल्लाह ताला के ऊपर कसम खा लेना, अल्लाह ताला चेंजेस थिंग्स अराउंड, अल्लाह ताला जो है ना वो दुनिया को बदल देते हैं, अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी करने के लिए जो भी करने की जरूरत पड़े वो कर गुजरते हैं। वलकद रअयतुहु यक़ऊ बिउजरतिन फिल जन्ना, और मैं देख रहा हूं कि ये अम्र इब्न जमू जो है ना ये जन्नत में अपने लंगड़े पन के साथ चल रहे हैं। अच्छा, जन्नत में इनको टांग क्यों नहीं दे दी गई, जन्नत में तो टांग मिल जानी चाहिए थी, है ना। नबी अलैहि सलाम फरमाता है कि मैं देख रहा हूं कि वो लंगड़ेपन के साथ जन्नत में चल रहे हैं। ठीक है, तो क्यों, आदत थी उनको, बड़ा बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने कि दुनिया की आदत जो है वो जन्नत में भी खत्म नहीं होती। ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आदत वाला मसला नहीं है, लंगड़ापन तो कोई ऐसी कोई चीज को थोड़ी है।
इसके
अच्छा, वो सारा सीन हो चुका ना, वो बातचीत वगैरह हो चुकी होती है, अब तो वो जन्नत में पहुंच गए ना, और वहां पर जाके जो लंगड़े पन में चल रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने जो है ना वो अल्लाह की कसम भी खा ली थी कि वल्लाही अन्नी ला अर्जू, कि ए अल्लाह की कसम मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं ये तमन्ना करता हूं, अन अपाऊ बि उर्जती हाजी फिल जन्ना, कि मैं जन्नत में अपने इस लंगड़ेपन के साथ चलूं। वल्लाही अल्लाह की कसम मैं ये उम्मीद रखता हूं कि मैं जन्नत में जाऊंगा और अपने इस लंगड़ेपन से के साथ ही चल रहा हूंगा, है ना। तो इन्होंने अल्लाह ताला के साथ कसम खा करके ये वाली जो है वो उम्मीद रख ली थी, अल्लाह ताला ने उम्मीद को पूरा, भाई जैसे आपने उम्मीद रखी है लंगड़ेपन के साथ जन्नत में चलना है, मैं आपके लंगड़ेपन वाली उम्मीद को पूरा कर देता हूँ, ठीक है जी।
तो
भाई ये तैश में थे उस ये जो है ना सख्त किस्म के जज्बात में थे, है ना। यानी बूढ़े बूढ़े जब हो जाते हैं तो बूढ़े होने के बाद जिनके दादा अब्बू वो जानते हैं दादा अब्बू कैसे होते हैं, ठीक है ना। दादा अब्बू को दादा चीजें समझ नहीं आ रही होती, उनको जब गुस्सा आता है ना तो वो फिर बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, है ना। ये भी तो दादा अब्बू ही थे ना भाई, है ना। बूढ़े भी थे, उनके बेटे जवान थे, जा करके जिहाद में लड़ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें कही। अब ये किस्म मतलब आम आदमी से ये आप क्या क्यों ये बोल रहे हैं कि मुझे अपने घर के वालों की तरफ वापस नहीं आना, है ना। आम आदमी तो इस तरह की कभी दुआ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन बूढ़े होने के बाद पर ये बातें समझ नहीं आती है, उन्होंने ऐसी किस्म की जो है ना वो दुआ भी मांग ली, ऐसी जो है वो कसमें भी खा ली, लेकिन थे इतने अच्छे और इतने मुखलिस थे और इतने ईमान वाले थे, अल्लाह ताला ने कहा ठीक है जो भी मांगते हो मैं तुम्हारे पूरी करता, जो मांगो मैं पूरी करता, ठीक है। ऐसे था सहाबा कराम हुआ करते थे। अच्छा, हुसैन रतान की शहादत जो है, हाँ ये बस अगरचे का टाइम तो हो गया है लेकिन बस चंद मिनट इस वाली शहादत को ना पढ़ के हम करते हैं, क्योंकि ये किसी को याद है बदर का जब हम वाकया पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक विन विन सिचुएशन का जिक्र किया था। विन विन सिचुएशन क्या थी वो?
जी
नहीं, वो बदर में नहीं, वो तो हमने, अच्छा मुझे याद है इसी घर के अंदर वो वाली क्लास हुई थी जी।
दोनों
जी बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है ना। अब्बा भी जिहाद पे जाना चाहते थे और बेटा भी जिहाद पे जाना चाहता था, ठीक है। घर के अंदर जो है वो औरतें थीं और कोई ऐसा यानी कोई संभालने वाला था नहीं, तो अब्बा को ये फिक्र हुई कि अगर हम दोनों गए और दोनों शहीद शहीद हो गए ना तो फिर ये औरतों का कौन संभालेगा और घर का कामकाज कौन करेगा। तो अब्बा ने बेटे से कहा, वालिद साहब ने, खुसैमा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम, खैसमा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा करो तुम जो है ना रहने तो मैं चला जाता हूँ, है ना। अब्बा ने अपना अब्बापन है ना, आई एम द ओल्डर वन, ठीक है ना, आई हैव द राइट, ठीक है। तो बेटे ने कहा नहीं अब्बू इसमें नहीं, आप बेशक मेरे अब्बू हैं, मुझे आपसे मोहब्बत भी बहुत ज्यादा है, मैं आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करता हूँ, लेकिन आई कैंट कॉम्प्रोमाइज माई जन्ना बिकॉज ऑफ यू, है ना, इसमें मैं इशार नहीं कर सकता। ये वो मर्दों में बयान, मतलब वो जुम्मे का बयान भी हुआ था इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, जन्नत वन्नत के बारे में सॉरी, ठीक है। तो बेटे ने कहा कि नहीं अब्बू मैंने जाना है, आप इधर ही रहें, ठीक है। तो फिर क्या तय हुआ था? कुरा अंदाजी तय हुई, जैसे उन्होंने बताया ना, ठीक है ना, लेट्स ड्रॉ लॉट्स, ठीक है। तो जब कुरा अंदाजी हुई ना तो जैसे वो टॉस करना कहते हैं, ठीक है, टॉस किया तो बेटे का नाम निकल आया, ठीक है। तो बेटे साहब जो है वो चले गए बदर के अंदर और वहां जाकर के हो गए शहीद, ठीक है। और शहीद होकर के वो पहुंच गया आराम से जन्नत के अंदर, और सबसे अफजल शुहादा जो कि बदर के शुहादा होते हैं, है ना, अब्बा हुजूर जो है वो पीछे रह गए, ठीक है। अब एक साल गुजर गया, बहुत का मौका आ गया ना, तो हजरत खैसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बेटे साद गज़वाए बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे और वो फिर वहां पे शहीद हो गए थे। तो अब क्या कुछ है, उस वक्त उनके घर के अंदर संभालने वाला था या नहीं था ये हमें नहीं पता, लेकिन जाहिर है एक साल के अंदर एकदम से कोई नया बच्चा तो नहीं पैदा हो जाएगा ना भाई, जैसे पहले मामला था वही अभी भी था, है ना, बेटा तो शहीद हो चुका था, अब ये खाली अकेले थे, ठीक है। तो इन्होंने ना नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफसोस मैं गज़वे बदर से रह गया, मेरा बेटा जो है वो चला गया, ठीक है, तो मैं बड़ा चाहता था कि मैं गज़वे बदर के अंदर शामिल हूँ, यहाँ तक कि इस शहादत के हासिल करने में मैंने बेटे से वो कुरान दाजी करी थी, मगर ये शहादत बदर के अंदर शहीद होने की ये मेरे बेटे की किस्मत में लिखी हुई थी, तो उसका नाम निकल आया और उसको शहादत मिल गई और मैं रह गया शहीद होने से, है ना, क्या अजीब लोग थे। तो मैंने ना आज रात ख्वाब में अपने बेटे को देखा, हजरत खैर फरमाते हैं आज रात ना मैंने बेटे को अपने ख्वाब में देखा था, बहुत हसीन और जमील शक्ल के अंदर था वो, ठीक है, जन्नत के बागात और नहरों में वो सैर तफरी करता फिर रहा है, और मुझसे कहता है कि ए अबू आप भी यही आ जाओ आप भी आ जाए, हम दोनों मिलके जन्नत में साथ रहेंगे। कैसी मोहब्बत थी बेटे को अपने बाप से और बाप को अपने बेटे से, ठीक है। तो कहते हैं कि आप भी आ जाइए, हम दोनों मिलकर के जन्नत में साथ रहेंगे, मेरे परवरदिगार ने जो मुझसे वादा किया था ना वो मैंने बिल्कुल सच्चा पाया, मुझे मिल गई जन्नत, ठीक है। तो फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त ना मैं अपने बेटे की मुराफिकत का मुश्ताक हूँ, यानी मैं अपने बेटे के साथ बस मिलना चाहता, ठीक है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, अब तमन्ना यह है कि किसी तरह अपने रब के पास चला जाए और अपने बेटे से जाकर मुलाकात करूँ, ठीक है। यानी दोनों चीजें थी, रब से भी मिलना है बेटे से भी मिलना है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझको शहादत और जन्नत में अपने बेटे साद की मुराफिकत नसीब हो, बेटे के साथ जन्नत में मिलना नसीब फरमा दिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैसमा रज़ी अल्लाह तआला के लिए दुआ फरमा दी और अल्लाह तआला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और खैसमा रज़ी अल्लाह तआला जो थे वो मारकए उहद में शहीद हो गए। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह तआला खैसमा रज़ी अल्लाह को उसके बेटे से मिलवा दिया होगा, ठीक है। अभी वो गरीब किस्म के लोग थे ये, है ना, तो हम दिल में तमन्ना रखें, ठीक है, शहादत ये एक दुआ है, बहुत आसान सी छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्म अरज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, ठीक है, ए अल्लाह आप मुझे अपने रास्ते की शहादत आप। उमर फारूक हज़रत ने भी ये दुआ मांगी थी, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने सुना कि उमर फारूक ने दुआ मांगी है, अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद से पक्की दुआ है, ठीक है ना, और जब शहादत का जिक्र आता है उस वक्त और भी याद आ जाती है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई ऐसा शख्स जिसने कि सारी जिंदगी जो है ना वो शहादत की तमन्ना नहीं करी, कभी उसके दिल में कोई शौक पैदा नहीं हुआ, ठीक है, तो वो शख्स जो है ना वो जब मरा ना तो वो एक निफाक की हालत में मरता है, हिपोक्रेसी की हालत, ठीक है। तो मोमिन के दिल में जो है ना वो कम अज कम तमन्ना एक आध मरतबा दुआ भी मांगने या मुस्तकिल मांगते रहे, ठीक है जी। हिपोक्रेसी का मतलब मुनाफिकत, ठीक है, यानी एक यानी वो काफिर नहीं होता कि भाई शहादत की उसने कभी तमन्ना करी तो वो काफिर हो गया, नहीं, लेकिन एक एक बुराई है कि भाई ऐसा क्यों है कोई मोमिन कि भाई ये शहीद ही होना चाहता अल्लाह ताला के रास्ते, कोई तमन्ना ही नहीं है इसकी इसके दिल के अंदर, ठीक है। शहीद होना या ना होना ये अल्लाह का फैसला है ना, कोई फोर्स नहीं कर सकता। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने बड़े शिपे सालार थे, कितना लड़ाई करते थे, कितना जबरदस्त उनकी जंगें होती थी और दुआएं करते रहते थे अल्लाह ताला, अल्लाह मैं शहीद हो जाऊं शहीद हो जाऊं, और जहां पे ज्यादा लड़ाई होती हो रही होती थी ना वहां पे घुस जाते थे, ठीक है, कि भाई शायद कोई मुझे शहीद कर दे लेकिन सैफुल्ला थे, कोई इनको शहीद कर नहीं सका, तो बिस्तर के ऊपर उनका इंतकाल, सारी जिंदगी लड़ाइयां करते रहे, इंतकाल कहाँ पे हुआ, बिस्तर पे जाने के हुआ, ठीक है। तो भाई ये फैसले अल्लाह ताला के होते हैं, हम तो इसको फोर्स नहीं कर सकते, खुदकुशी को थोड़ी कर सकते हैं, अभी शहीद हो गए, खुदकुशी करने के बाद तो जानों में जाता है बंदा, ठीक है, लेकिन दुआ तो मांग सकते हैं ना, इसमें कोई पैसे तो नहीं लगते भाई, 4 रुपए दोगे तो मैं शहादत मिलेगी तो दुआ करने की इजाजत मिलेगी, दुआ तो फ्री में करता है ना बंदा जी।
जी सबसे कम दर्जा
नहीं, जो सबसे कम दर्जे का सहाबी है वो सबसे नेक गैर सहाबी से ऊपर है, ठीक है। तो अच्छा, एक सहाबी जो शायद हो सकता है कम दर्जे के हों, पता नहीं, लेकिन उनका जिक्र अगले में आ रहा है, अगले ही वाक्य है, वो सहरम उनका नाम था, वो सारा जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते रहे और लोगों को इस्लाम से रोकते रहे, लेकिन देख रहे थे चीजों को, तो जब उहद में सारे लोग निकले ना जंग के लिए। तो ये उसैरम जो थे ना, उन्होंने कहा यार मैंने बहुत गलत किया, मुझसे गलती हो गई, ये निकल गए, कहते मैं भी जा रहा हूँ लड़ने के लिए, ठीक है ना। ये वहां पे गए उसैरम, और इन्होंने खूब लड़ाई करी, हत्ता कि जख्मी होकर के गिर पड़े। उस वक्त जो है ना वो लोग आए और हैरान, उसैरम तुम तो दुश्मन, तुम तो जो है वो काफिर, तुम तो जो है वो हर वक्त इस्लाम की मुखालफत करते रहे थे, तुम यहाँ पे क्यों आए थे लड़ने के लिए, है ना। तुम क्या अपने कौम की वजह से कि भाई तुम जो के अरब हो और तुम जो है वो मदीना के हो, इस वजह से आकर के लड़ना शुरू हो गए। कहा नहीं, मैं यहाँ पे आया था अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में और ईमान के साथ आया था लड़ने के लिए, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर में उनका इंतकाल हो गया। सही है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि तुम जानते हो उस बंदे का कि जिसने जिंदगी में एक नमाज भी नहीं पढ़ी और वो जन्नत में पहुंच गया। वो कौन थे? वो उसैरम रज़ियल्लाहु अन्हु। एक नमाज भी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस आए लड़े शहीद हो गए, जन्नत में पहुंच गए, ठीक है जी।
तो बहुत से
हाँ, तो जो मौत से कराहियत होती है तो फिर वो दिल के अंदर निफाक होता है। तो यही तो फरमाया कि भाई जिसने ऐसा किया तो उसके दिल में निफाक है, कि शायद उनकी तमन्ना ना चली। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी हम अभी पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।